श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश हे कृष्णकरुणासिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशा गोपिकाकान्ता राधाकान्ता नमोऽस्तुते तप्तकाञ्चनगौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरं हरे कृष्ण। मैं सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आज के इस पावन अवसर पे मेरे को कथा करने को बोला गया श्यामानंद पंडित के प्रति। श्यामानंद पंडित के बारे में थोड़ी हिंदी की मेरी कमजोरी रहेगी, हिंदी मातृभाषा नहीं, और ज़्यादा प्रचार मेरा मराठी में चलता है तो, और सुनना वाला ज़्यादा इंग्लिश में चलता है, सो हिंदी में इतने वर्ड्स आएंगे नहीं अच्छे से, फिर ट्राई करूंगा हिंदी में बोलने का। प्रभु जी मेरे को बोला कि आप क्लास दे सकते हो क्या श्यामानंद पंडित के बारे में, तो बोला ठीक है चलो ट्राई करते हैं उनके बारे में क्लास देने के प्रति। तो फर्स्ट टाइम उनके बारे में इतना पढ़ा कि पता ही नहीं था, इतने साल से मंदिर में रह रहा हूँ, इतना सुंदर मंदिर अपने गोरधर कॉलेज में है पर इसका इतना ज्यादा ग्लोरीज है, आज तक पता ही नहीं था। आज क्लास देने के माध्यम से वो सब पढ़ा और सुना तो पता चला कि हमको पता ही नहीं हमारे पास क्या है एक्चुअली। महाराज जी ने जो हमारे जो बनाया है इधर, वो समझने के लिए एक्चुअली जब तक हम जिन आचार्यों के मंदिर है वो आचार्यों के बारे में सुनेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, तब तक उनकी ग्लोरीज हमको समझेंगे नहीं कि क्या दिया है महाराज हमको। तो कथा के माध्यम से हम जैसे आगे जाएंगे हम समझने की कोशिश करेंगे इस मंदिर का महत्व क्या है और श्यामानंद पंडित कौन थे। तो श्यामानंद पंडित का जन्म जो था वो धरेन्दम बहादुरपुर गांव है बंगाल में, वहां पे उनका जन्म हुआ था। उनके पिता का नाम था कृष्ण मिलन और माता का नाम था दुरिका। और ये जो फैमिली है ये कावड़ कम्युनिटी से फैमिली है, गोप कम्युनिटी, सदा गोप बोलते हैं उसको, सदा गोप कम्युनिटी से वो फैमिली आती है। वैसे गोप है वो, दूध दूध बेचने वाले लोग है, गोप लोग। उसी कम्युनिटी में ये श्यामानंद पंडित का जन्म हुआ। ऐसा बोला जाता है कि आध्यात्मिक जगत में श्यामानंद पंडित जो है वो कनक मंजरी है, जो बहुत प्रिय है राधा रानी को, ऐसे कनक मंजरी जो आध्यात्मिक जगत में श्यामानंद पंडित है। अभी कृष्ण मिलन और दुरिका जी को बहुत सारे लड़के लड़कियां हुए पर दुर्भाग्यवशपूर्ण वो जिंदा रह नहीं पाए, उनका देहांत तो हो गया, वो चले गए। और ऐसे कई संतानें जाने के बाद एक संतान का जन्म हुआ कृष्ण मिलन जी और दुरिका जी को। अभी इतनी संतानें चली गई तो उनकी इच्छा थी कि एक तो संतान जीवित रहे, तो क्या उपाय है जीवित रखने का संतान को, तो उन्होंने सोचा कि उनका नाम ऐसा नाम रखेंगे हम ताकि यमराज उनको स्पर्श ना कर सके, तो उनका नाम क्या रखते, दुखी। अभी आदमी तो दुखी है तो यमराज क्या करेगा, दुखी उसको क्या लेके जाएंगे, दुखी तो दुखी रह जाए ना, नरक में जाके क्या करेंगे उसको, तो दुखी रह जाए इधर, इसलिए हम दुखी रख दे ताकि यमराज उसको आके स्पर्श ना कर सके। पर जब वो जब उनका जन्म हुआ तो उनके लक्षण देखकर समझ रहा था कि ये बहुत महान वैष्णव है। सो दो टाइप के लोग जन्म लेते हैं इस दुनिया में, एक हमारे से लोग जो कर्मों के हिसाब से जन्म लेते हैं, कर्मणा दैव नेत्रेणा जंतु देव पत्ते स्त्रिया प्रविष्ट उदम पुमसो रेता कणाशया। हम कैसे जन्म लेते हैं, हमारे कर्मों के हिसाब से घूमते रहते हैं हम, दैव नेत्रेणा। और ये किसके अंडर होता है, दैवो देवताओं के अंडर होता है, देवता देवताओं के पास कर्मों का हिसाब रहता है और अपने कर्म के हिसाब से ये प्रकृति है देवतांग के सहाय लेके अपने को किसी स्त्री के उदर में रख देती है और उस तरह के माध्यम से अपना जन्म होता है। पर जो महान वैष्णव रहते हैं वो अवतरित होते हैं, और ये श्यामानंद पंडित उसमें से एक थे। सुजी का नाम दुखी मिला। अब दुखी जब पैदा हो गया, आगे बढ़ने लगा थोड़ा थोड़ा, जब थोड़ा बड़ा हो गया दुखी, उसका उपनयन संस्कार भी कर दिया उन लोगों ने, और पढ़ाई करने लगा। पढ़ाई में बहुत फास्ट था दुखी, उसने ग्रामर पढ़ा, व्याकरण पढ़ा, उसने बहुत सारे अलंकार पढ़े, जो जो साहित्य का सब चीज रहता है, अलंकार, समास, व्याकरण, जो जो चीजें रहती सब उसने कंठस्थ कर लिया, और काफी ग्रंथों के अध्ययन भी बचपन में ही दुखी ने कर लिया। और विशेष रूप से जब दुखी बढ़ने लगा, बड़ा होने लगा, क्योंकि बंगाल का एरिया था, बंगाल में काफी टाइम काफी लोग गौर कथा करते थे, चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु कथा करते रहते, तो उनकी कथाएं ये दुखी सुनता रहता था, तो उसके स्वाभाविक रूप से वो कथा सुनने से उसके मन में चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु के प्रति बहुत आकर्षण पैदा हो गया कि हाँ भक्ति करनी है, पर किसकी भक्ति करनी है। नेचुरली फादर भी वैष्णव थे, मदर भी वैष्णव थी, उसकी माँ पिता वैष्णव थे, बिकॉज सदा को फैमिली थी, गोप कम्युनिटी से थे वो, सो वैष्णव तो थे ही, विष्णु की भक्ति, भगवान की भक्ति चलती रहती थी, पर उसमें से कौन से अवतार की भक्ति करनी है। सो चैतन्य महाप्रभु के प्रति विशेष आकर्षण पैदा हुआ उनके उनके मन में। ये आकर्षण देख के उनके पिता ने डिसाइड किया कि इसको एक गुरु की जरूरत है, इसलिए किसी गुरु से दीक्षा लेना जरूरी है, एक वैष्णव गुरु से दीक्षा लेना जरूरी है, तो किसके पास उनको भेजा जाए। तो ये दुखी ने हृदय चैतन्य के बारे में काफी सुना था, हृदय चैतन्य बोल के महान वैष्णव अंबिका कालना बोल के गांव है मायापुर के पास, वहां पे रहते हैं। क्या महानता है हृदय चैतन्य की, क्यों हृदय चैतन्य गुरु बोल के चाहिए मेरे को, उनके पीछे एक स्टोरी है। बहुत हृदय चैतन्य के गुरु थे गौरीदास पंडित, जो कि आध्यात्मिक जगत में सुबल सखा है, कृष्ण के सखा, सुबल सखा, जो गौरीदास पंडित बोल के चैतन्य लीला में आए थे, और वो साख्य रस में थे स्वाभाविक रूप से। और सख्यों का भाव क्या रहता है, हमेशा भगवान मेरे साथ रहे, मेरे साथ खेले, खेल खुद खेले। एक बार चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु अंबिका कालना गए थे, तो गौरीदास पंडित के साथ उनकी मुलाकात हो गई, भेंट हो गई, और जब वो भेंट होने के बाद वो फिर से जाने लगे वापस, तो गौरीदास पंडित बहुत विरह में चले गए कि नहीं मैं इनको छोड़ नहीं सकता, अभी महाप्रभु के बिना कैसे जी पाऊंगा मैं, नित्यानंद प्रभु के बिना कैसे जी पाऊंगा, इनके बिना रह नहीं पाऊंगा मैं। वो छोड़ नहीं रहता उनको, नहीं आप जाइए मुझे से, आपके बिना मैं रह नहीं पाऊंगा। महाप्रभु बोले हमको जाना तो पड़ेगा भाई, क्या करें, आगे काम तो करना है, प्रचार तो करना है, आगे इधर से हिलना तो पड़ेगा, कुछ तो कीजिए, मैं आपके बिना रह नहीं सकता। तो महाप्रभु ने क्या किया, अपने माइंड से दो ड्यूटी बना के दी, गौर नेता की ड्यूटी बना के दी, उनके हाथ में दे दी, बोले ये जो गौर नेता ये मुझसे अभिन्न है, आप इनकी पूजा करो, इनके साथ रहो, और ऐसा समझो कि मैं ही आपके साथ हूं, मुझसे ये अभिन्न है, आप इनकी सेवा करो, आपको मेरा सेवा करने का अनुभव मिलेगा। फिर भी गौरीदास पंडित को वो हजम नहीं हुआ, बोले नहीं नहीं ये तो ड्यूटी है, ये तो विग्रह है, विग्रह आदम प्रदान इतना नहीं कर पाते इतना आप करवाओगे, मुझे आप ही चाहिए। तो ठीक है, ये एहसास दिलाने के लिए, ये कन्विक्शन दिलाने के लिए कि ये ड्यूटी मुझसे अभिन्न है, जो सच में चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु थे वो विग्रह बन गए, और जो विग्रह थे वो चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु बन गए। बोले अरे ये कैसे हो गया, तो बोले नहीं 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 आप जो ओरिजिनल हो जाओ, ड्यूटी को ड्यूटी ग्रहण दो, मेरी वजह से आप अपना रूप मत बदलो। तो फिर से जो चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु थे वो ड्यूटी बन गए, और जो ड्यूटी बन गए चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु वो फिर से ओरिजिनल रूप में आ गए। उनको कन्विक्शन आ गया कि हाँ ये जो विग्रह मेरे को दिए है वो सच में चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु ही है, और फिर वो विग्रह उन्हें सहन कर पाए और गौरीदास पंडित उनकी पूजा करने लगे। और उनका एक शिष्य था हिरण्यक बोल के, गौरीदास पंडित जी का, जो उनको मदद करता था गौरीदास की सेवा में। और एक दिन ऐसा हुआ कि गौरीदास पंडित किसी काम से बाहर गए थे और गौर पूर्णिमा आ गए उधर, तो उन्हें सोचा गौरीदास पंडित हिरण्यक ने सोचा कि भले मेरे गुरु इधर नहीं है, पर मेरा कर्तव्य है कि गौर पूर्णिमा का उत्सव मनाऊं। और बहुत बड़ा उत्सव का आयोजन किया अंबिका कालना में उन्होंने, और उत्सव इतना फेमस हुआ, इतने लोग आ गए, पर उनके गुरु नहीं थे उधर, तो क्या करें अभी। तो और वो उत्सव इतना सुंदर था कि जो कीर्तन चल रहा था वो कीर्तन में इतना भाव विभोर कीर्तन चल रहा था कि कीर्तन में गौर थे नाचने लगे, जो विग्रह रूप में गौर थे वो नाचने लगे, एक्चुअली विग्रह के रूप में। और उसी समय गौरदास पंडित का उधर आगमन हो गया और उन्हें देखा क्या रे, एक तो हृदय चैतन्य ने मेरे परमिशन के बिना गौर पूर्णिमा का उत्सव आयोजित किया, ये तो गलत बात है, गुरु के आज्ञा का अपमान है ये। हम सुबह सुबह सुनते हैं हरिनाम के प्रति अपराध क्या है, तो तीसरा अपराध है गुरु के आज्ञा के पालन ना करना। अगर हम ऐसा करेंगे हरिनाम की रुचि कम होती है हमारी। और सबसे बड़ा आदेश क्या है गुरु का, अटेंटिव चैंटिंग कीजिए। अटेंटिव चैंटिंग करना है गुरु का आदेश रहता है, सोलामाला अटेंटिव होने चाहिए। अगर हम सोलामाला अच्छे से नहीं करेंगे एक प्रकार से हम गुरु का अपराध कर रहे हैं, इसलिए हमारा जपा का टेस्ट इतना ज्यादा बढ़ता नहीं है। जिस दिन हमारा चैंटिंग अटेंटिव होता है, फोकस चैंटिंग रहता है, उस दिन का हमारा जो आनंद का लेवल रहता है वो बहुत ज्यादा रहता है। सो गुरु के प्रति अपराध हो गया, इसकी सजा हृदय चैतन्य को मिलनी चाहिए। तो गौरदास पंडित दंडा लिया और हृदय चैतन्य को मारने के लिए चले गए। जैसे हृदय चैतन्य को मारने के लिए चले गए, भक्त क्या भगवान कह रहे थे, भक्त वत्सल रहते। सो महाप्रभु का कह रहे, नहीं नहीं मेरे भक्त को हृदय हिरण्यकश्यप को मार रहे, हिरण्यकश्यप को मारने जा रहे, तो कैसे मैं सहन कर सकता हूं। तो विग्रह रूप के गौरदास बोलने लगे उनसे कि इसका कोई गलती नहीं है, मैंने उसको प्रेरित किया था कि गौर पूर्णिमा उत्सव मनाओ। तो गौरदास पंडित का, अरे ये कल्प्रिट है सच में, गुनेगार कौन है, ये गौर नेता जो है गुनेगार है, इनको सजा मिलनी चाहिए। तो गौरदास पंडित लकड़ी लेके स्टिक लेके गौरदास के पीछे दौड़ पड़े और गौरदास दौड़ रहे दौड़ रहे दौड़ रहे विग्रह रूप के गौरदास दौड़ रहे। ये क्या लीला चल रही है कि भक्त भगवान के पीछे पड़ा है मारने के लिए कोई विग्रह रूप में, और छुपने के लिए उन्होंने हिरण्यक के हृदय का आश्रय लिया, हिरण्यक के हृदय में जाकर छुप गए, इसलिए उनका नाम पड़ा हृदय चैतन्य। ये जो महानता है हृदय चैतन्य की, जिसके हृदय का आश्रय स्वयं गौर नेता ने लिया है, ऐसे व्यक्ति को मेरा गुरु बनाना है, ये दुखी ने डिसाइड किया था। अभी ढूंढेंगे कैसे उसको, तो सिंपल है, बहुत सारे गौड़देश से भक्त उधर आते थे धीरेन्द्र बहादुरपुर में, तो कृष्ण मिलन ने डिसाइड किया कि चलो इनके साथ को भेज देते दुखी को, दुखी जाएगा उधर, उधर पूछते पूछते वो अंबिका गलना पहुंच जाएगा। तो अंबिका गलना पहुंच गया, पूछते 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 हृदय चैतन्य देखा उसको, बोले कौन हो तुम और यहां पे क्यों आए हो। बोले मैंने आपकी महानता सुनी है कि आपके हृदय में स्वयं गौर ने प्रवेश किया है अपने भक्त से डर के, इतना आपका हृदय पवित्र है कि भगवान वहां छुपना चाहते हैं जाके, ऐसा आपका हृदय है, इसलिए मैं आपसे चैतन्य महापुरुष के प्रति भक्ति कैसे करनी है ये सीखना चाहता हूं, आपसे गुरु मंत्र लेना चाहता हूं। तो उन्हें पूछा आप कौन हो, नाम क्या है आपका, कहां से आए हो, सब जानकारी पूछी। तो बोला मेरा नाम दुखी है और मैं धीरेन्द्र बहादुरपुर से आया हूं, मैं सदाब कम्युनिटी से हूं, गोप कम्युनिटी से मैं हूं, और बचपन में गौर नेता के बारे में बहुत सुना है मैंने, तो उनके प्रति भक्ति करने की मेरी इच्छा है, इसलिए मैं तो आ गया हूं। ये उनकी बातें जो सुन रहे थे हृदय चैतन्य, उनको लगा कि इसके बातों में कुछ कुछ है, समथिंग है इसकी बातों में, ये साधारण व्यक्ति लग नहीं रहा है, तो इसको दीक्षा इसको दीक्षा देने के लिए वेट करने की जरूरत नहीं है, मैं इसको इमीडिएटली दीक्षा जो है दे दूंगा। और इमीडिएटली उसको दीक्षा दे दी, उसका नाम हो गया दुखी कृष्णदास, दुखी वैसे ही रखा पर आगे कृष्णदास जोड़ दिया, दुखी कृष्णदास। और सबसे पहले उसको सेवा दे दी, बहुत सिंपल सेवा, क्या सेवा दे दी, हर एक विग्रह रहते उसके पीछे गार्डन रहता था, भगवान के भगवान को फूल अर्पण करने के लिए, भगवान को भोगा जो बनाते उसको धान धान उगाने के लिए गार्डन रहता था, वो फ्लावर गार्डन था, रोज गंगा से पानी लेके आने का, और ये जो फ्लावर गार्डन है जो फूलों का गार्डन है उसको पानी डालने का, और सुंदर फूल आने चाहिए जो फूल हम गौर को अर्पण कर सकते हैं। सो बाह्यात का रूप से देखा जाए सिंपल सेवा है, ज्यादा कुछ इंटेलेक्चुअल सेवा नहीं है, कुछ मैनेजमेंट करने को बोला नहीं ज्यादा, सिंपल सेवा दिया गया उसको कि गंगा से पानी लाओ और पानी डालो, और गंगा थोड़ी दूर थी, मंदिर से थोड़ी दूर गंगा थी, तो रोज हृदय चैतन्य सॉरी दुखी कृष्णदास मटके में पानी भर के लाते थे और कुछ पौधों को डालते थे, फिर से जाते थे नदी बस मटका भरते थे पानी डालते थे फिर से जाते थे, ऐसे दिन भर करते रहते थे। अभी हेवी मटके रहते थे सर के ऊपर रखते थे, कई दिन उन्होंने सेवा की और सेवा में इतने वो आनंद ले रहे थे, सेवा में इतने अब्जर्व थे कि उनको पता ही नहीं चला कि उनके सर के ऊपर बहुत सारे जख्म हो रही है, बहुत सारे स्क्रैचेस आ रहे हैं, ब्लड आ रहा है, उजिंग हो रहा है उसमें से, उसमें से पस आ रहा है, इतना वो हेवी रखने की वजह से। और इतना ही नहीं, उसके ऊपर बहुत सारे कीटक वॉर्म्स आके बैठ रहे और उसका खून पी रहे, इतना सब हो रहा था, पर उनको पता ही नहीं चला, वो सेवा में मग्न है। दुखी कृष्णदास, पर उनके गुरु हृदय क्षेत्र ने देखा है कि क्या चल क्या रहा है भाई, तुम्हारे सर के ऊपर बहुत सारे स्क्रैचेस आए हुए, ब्लड आ रहा है, पस आ रहा है, पस आ रहा है उसमें से, और वॉर्म्स आके उसमें बैठ रहे। वॉर्म्स को हिंदी में क्या बोलते बताए मेरे को, गांडू मराठी बोलते उसको, वो आके बैठ रहे उसमें पर, और इतने वेदना तुमको पता नहीं चल रहा है। और तब उसने हाथ लगाया सर के ऊपर, तो उसका पता लग गया, अरे हाँ, कि मेरे सर के ऊपर ये सब चीजें हुई है। तो देखो, भक्त जो रहता है, जब सेवा में एब्जॉर्ब रहता है, बॉडी में कुछ वेदनाएं होती है उसको समझता ही नहीं है, क्योंकि एब्जॉर्ब जब आदमी सेवा में रहता है, हृदय से इतना आनंद उसको मिलता है कि वो सारी बॉडी कंडीशन ट्रांसेंड कर सकता है, ट्रांसेंड करता है राधा। हमारे इसका एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल है, वो एग्जाम्पल एक सन्यासी का, प्रभुपाद के डिसाइपल है, भक्ति राघव महाराज। आपने देखा होगा उनको, कई लोगों ने देखा होगा, उनका पैर जो है, उनको एक पैर नहीं है, एक ऐसे कुबड़े लेके चलते वो। क्यों हो ऐसे? मायापुर में पहले बहुत सारे गुंडे लोग आते थे, अटैक करते थे वृंदावन मायापुर के मंदिर के ऊपर। तो एक बार एक कई गुंडों ने अटैक किया था और राधारानी को छुड़ाना चाहते थे वो। तो राधारानी को बचाने के लिए राधारानी को पकड़ के रखा, सोने की राधारानी थी, उनको पकड़ के रखा था। और एक गुंडों ने पैर के ऊपर गोलियां चलाई, बहुत सारी गोलियां पैर के ऊपर चलाई, उनको समझा ही नहीं गोलियां चली पैर के ऊपर, उन्होंने राधारानी को छोड़ा ही नहीं, राधारानी के ऊपर पूरा ध्यान था उनका। और फिर पुलिस वगैरह आ गई, उनने गुंडों को भगा दिया। और फिर एक भक्त ने बोला, महाराज आपके पैर में गोलियां लगी हुई है। और तब उनको पता था, अरे मेरे पैर में गोलियां लगी हुई है। तब तो उनको समझा भी नहीं कि गोलियां लगी हुई है। बहुत बार हमारे हालत ऐसी रहती है कि कुछ हमको थोड़ी सी वेदना होती है जपा करते वक्त, हमारा पूरा जपा डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि हमारा एब्जॉर्प्शन जपा में अभी तक नहीं इतना। हम कुछ सेवा करते हैं, सर दुख रहा है, बोलते हैं अभी आज सेवा नहीं करूंगा, सर दुख रहा है मेरा, बॉडी दुख रही है, बहुत थक के आया हूं मैं, कल वर्कअप सेवा नहीं कर सकता मैं, बहुत लेट नाइट हुआ, सुबह उठने पाऊंगा, नींद नहीं होगी पूरी मेरी। क्यों ऐसा होता है हमारे साथ? हमारा माइंड इतना एब्जॉर्ब नहीं है सेवा में। पर जिन भक्तों का माइंड सेवा में एब्जॉर्ब रहता है, उनको पता भी नहीं चलता कि शरीर के प्रति क्या हो रहा है, क्या वेदना हो रही है। तो हृदय चैतन्य ने क्या बोला, अपना हाथ जो है उनके सर पर रख दिया, और जिस भक्त का स्पर्श जब होता है, सारे जो दोष है शरीर के चले जाते हैं, और सारा जो वेदनाएं हो रही थी, सारे जो स्क्रैचेस आए थे, सारा ब्लड आ रहा था, सारा एक सेकंड में चला गया, और परफेक्टली क्योर हो गए दुखी कृष्णदास। ये भक्त के स्पर्श का ताकत रहता है। संत तुकाराम के जीवन में भी ऐसा ही हुआ था। एक मंबाजी बोल के आदमी था, जिसे तुकाराम को नीचा दिखाने के लिए वो आया था देहू में। तुकाराम के बाजू में घर लिया था, घर के बाजू में रोज तुकाराम को देखते थे। क्यों देखते थे? उनके कैसे दोष निकालेंगे हम, पर दोष निकाल नहीं पाता था, दोष दिखता नहीं था उनके जीवन में। रोज शाम को मंदिर में जाके तुकाराम का कीर्तन अटेंड करते थे, कथा अटेंड करते थे, कथा सुनने के लिए नहीं, कीर्तन सुनने के लिए नहीं, दोष देखने के लिए, क्या दोष मिल सकता है मेरे को। एक महीना कुछ दोष मिला ही नहीं, और एक महीने के बाद तुकाराम महाराज झाड़ू मार रहे थे, दो घर के बीच में बबूल के झाड़ का कंपाउंड था, उसको धक्का लगा तुकाराम का, गलती से कंपाउंड गिर गया, बस उसको दोष मिल गया। बबूल के झाड़ को काटे रहते बहुत सारे, वो झाड़ से उठाया और तुकाराम को मारने लगा, जोर जोर से बहुत मारने लगा, ब्लड आने लगा बॉडी से तुकाराम जी के। तुकाराम जी विठल 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 बोल रहे, कुछ प्रतिकार नहीं कर रहे, क्योंकि भक्त का गुण क्या है भागवतम बताता है, तिरस्कृता विप्रलब्धा क्षपता क्षिप्ता हता अपि नस्यतात प्रतिकुर्वन्ती तद्भक्ता प्रभोपि। अगर किसी समय हमको जरा सा अहंकार आए कि मैं वैष्णव हूं, मैं भक्त हूं, तो हमको टेस्ट पे डालना चाहिए, कैसे टेस्ट पे खड़ा होता हूं क्या मैं। तिरस्कृता, किसने हमको तिरस्कार किया, इंसल्ट किया, विप्रलब्धा फंसाया हमको, चीटिंग किया, क्षपता हमको निग्लेक्ट किया, क्षिप्ता हमको शाप दे दिया, हता मारा, नस्यतात प्रतिकुर्वन्ती, अगर वो भक्त रहेगा, अगर वो वैष्णव रहेगा, उसके प्रति प्रतिकार करने की कोशिश नहीं करेगा। नस्यतात प्रतिकुर्वन्ती तद भक्ता प्रभोपि, उसका भक्त कहा जाता है, वो भक्त है। कई बार हम लोग जरा हमको ग्लोरीफाई करते हैं, अच्छा भक्त हो, अच्छा भक्त, हाँ मैं सच में अच्छा भक्त हूं, पर कोई इंसल्ट करता है इमीडिएटली हम प्रतिकार करते हैं उसका, तो इमीडिएट श्लोक याद आना चाहिए कि अरे है मैं भक्त नहीं हूं, मैं प्रतिकार कर रहा हूं। नस्यात प्रतिकुरवंती। परीक्षा महाराज ने प्रतिकार नहीं किया जब शाप मिला उसको, उसने एक्सेप्ट किया शाप भगवान की कृपा बोल के। सो तुकाराम महाराज ने भी प्रतिकार नहीं किया, और जब पूरा बॉडी ब्लड से गिर गया उसका हाथ मार मार के दुखने लगा और वो रुक गया। बस मेरा हाथ दुख रहा है इसलिए मैं रुक रहा हूं। एक घंटे में भगवान की कृपा से उसके बॉडी पूरा हील हो गया तुकाराम महाराज का। और शाम को जब कीर्तन कर रहे तुकाराम महाराज मंदिर में गए, उन्हें देखा आज मम्बाजी आया नहीं है। उन्हें पूछा लोगों से, मम्बाजी क्यों नहीं आया आज? बोले मम्बाजी को बुखार चढ़ गया है क्योंकि उसने वैष्णव अपराध किया आज। और सब लोग बोले अच्छा हुआ, ऐसा होना चाहिए उसके साथ। आपके प्रति अपराध क्या, उसने एक वैष्णव के प्रति अपराध किया है? तुकाराम बोले नहीं 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 नहीं, मेरे को चाहिए वो इधर। तुकाराम ने कीर्तन छोड़ा, वो मम्बाजी के घर पे गए, देखा मम्बाजी ताप से फड़फड़ा रहा था। तुकाराम ने अपना हाथ उसके ऊपर लगा दिया और एक सेकंड में पूरा ताप जो शरीर का उसका चला गया। ये वैष्णव के स्पर्श का महिमा रहता है, और ऐसा ही उनके साथ हुआ दुखी कृष्ण के दास के साथ। ये सब सेवा का भाव जब देखा हृदय चैतन्य ने, तो हृदय चैतन्य बोले कि अभी आप जो है वृंदावन में राधा कृष्ण की सेवा करने के लिए क्वालिफाइड हो चुके हो। सो देखो, राधा कृष्ण के वृंदावन में सेवा करना, वृंदावन भाव में सेवा करना बहुत मुश्किल है एक्चुअली, उसके लिए बहुत हाई क्वालिफिकेशन चाहिए। श्री प्रभुपाद की कृपा से हम राधा कृष्ण की सेवा कर रहे इधर, पर प्रभुपाद क्या बोलते हैं, भले ही हम राधा कृष्ण की सेवा कर रहे हैं, हमारा मूड क्या है, हम लक्ष्मी नारायण की सेवा कर रहे हैं। क्योंकि राधा कृष्ण की सेवा करना बहुत उच्च स्तर है, हमारा वो स्तर नहीं है। रागानु का स्तर पे वो वृंदावन में राधा कृष्ण की सेवा कर सकते हैं, और रागानु का भक्ति करने के लिए हम मिनिमम उनको निष्ठा स्तर क्रॉस करना पड़ेगा, रुचि आसक्ति स्तर पर जाना पड़ेगा, तभी हम रागानु का भक्ति प्रैक्टिस कर सकते हैं। एटलीस्ट मैं तो अनर्थ रुचि स्तर पर हूँ, तो वो कंसीव नहीं कर सकता क्या हो सकती राधा कृष्ण भक्ति उस स्तर पर क्या होगी। तो अभी आप क्वालिफाइड हो चुके हो। सो अगर क्वालिफाइड करना है राधा कृष्ण की भक्ति करने के लिए, तो चैतन्य महाप्रभु के थ्रू ही जाना पड़ेगा। ये हमको हृदय चैतन्य और दुखी कृष्ण सिखा रहे हैं हमको उस अपने अपने जीवन अपने जीवन से। सो अभी आप वृंदावन जाओ, और वहां पे जीव गोस्वामी बोल के साधु है, उनके अंडर आप पढ़ाई करो। तो अभी अगर हमको ऐसे इंस्ट्रक्शन मिलते तो हम इमीडिएटली भागते, चलो हम उधर जाएंगे। पर जब दुखी कृष्णदास को इंस्ट्रक्शन मिली, वो कहाँ गए, सबसे पहले वो नवद्वीप गए। नवद्वीप में वो योगपीठ गए चैतन्य महाप्रभु घर पे, वहां पे जगन्नाथ मिश्रा के घर पे, वहां पे ईशान प्रभु बोल के थे, वहां पे रहते थे, उनसे आशीर्वाद लिए। बाद में वो गया गए, गया में उन्हें जगह देखी जहां पे ईश्वरपुरी ने दीक्षा दी थी चैतन्य महाप्रभु को, और विष्णु का फुट देखा, भगवान विष्णु के चरण कमल देखे। वहां से आशीर्वाद लेके वो काशी आ गए। काशी में उस वक्त तपन मिश्रा और चंद्रशेखर आचार्य दोनों थे उधर, जहां पे जिनके घर पे महाप्रभु रहते थे चंद्रशेखर आचार्य, और जिनके घर पे प्रसाद देते थे महाप्रभु तपन मिश्रा। रिसेंटली मैं काशी जाके आया तो वो घर देखा है प्रत्यक्ष रूप में, तपन मिश्रा का घर बहुत सुंदर विग्रह है वहां पे गौर निताई के। और एक ऐसा मंदिर है दुनिया का जहां पे विष्णु प्रिया का खड़ा हुआ विग्रह है, बाकी सब जगह बैठे हुए विग्रह है, विष्णु पे खड़ा हुआ विग्रह वहां पे है। सैकड़ों मंदिर बहुत सुंदर, बट छोटा सा घर है, ज्यादा लोगों को पता नहीं उधर, क्योंकि घोड़े वैष्णव बहुत कम है काशी में। तो वहां पे वो जाके आए, उनका आशीर्वाद लिया। फिर वो मथुरा आ गए, मथुरा में आदिकेश्वर का दर्शन लिया, उनसे आशीर्वाद लिए, विश्राम घाट में प्रसाद लिया, और वो होने के बाद उन्हें वृंदावन प्रवेश किया और श्रीजी गोस्वामी चरणों में समर्पित हो गए। गोस्वामी ने पूछा आप कहां से आए हो? बोले मेरे को हृदय चैतन्य प्रभु ने भेजा है, उनके द्वारा मैं भेजा गया, आपके अंडर शास्त्र सीखना चाहता हूं। तो प्रथमतः जीव गोस्वामी को सेवा दी थी कि ये जो स्थान है सेवा कुंज स्थान, यहां पे राधा कृष्ण की सेवा करो। एक छोटे से विग्रह उधर थे, आज भी देखोगे राधा श्याम सर मंदिर में, उन नाम पे एक गुफा है नीचे, देखो उस गुफा में जाके राधा कृष्ण की आप सेवा करो। तो वहां पे वो सेवा करने लगे दुखी कृष्णदास। वहां पे सेवा करने के बाद अगला सेवा उनको दिया, वो हायर सेवा है। देखो थोड़ा बिल्ड हो सकते हैं हम इधर। पहला क्या बोले, राधा कृष्ण की सेवा करो, विग्रहों की सेवा करो। नेक्स्ट सेवा दिया उनको जीव गोस्वामी ने, आप सेवा कुछ में झाड़ू मारो, सेवा कुछ में झाड़ू मारो। तो हमको लगा झाड़ू मारना तो लोअर सेवा है एक प्रकार से देखा जाए तो, भौतिक दृष्टि देखा जाए तो, और एक विग्रह की सेवा करना हायर सेवा है। पर जीव गोस्वामी के हिसाब से सेवा कुंज में झाड़ू मारना बहुत उच्चतम सेवा है, क्योंकि मंजरी की सेवा है, मंजरी भाव में करने वाली सेवा है। जितना मिनियल सेवा हम करेंगे उतना मर्सी जो है राधा कृष्ण का ज्यादा आकर्षित होता है। सो रोज दुखी कृष्णदास वहां पे सेवा करने लगे, सेवा कुंज में रोज झाड़ू मारने लगे, जहां पे सेवा कुंज में जब जाते थे सुखी कृष्णदास, तो बहुत आनंद आता था उनको झाड़ू मारने में, एक अलग से एनर्जी उनमें आती। सुबह सुबह जाते थे रोज झाड़ू मारने वाले, क्योंकि रात को उधर जाने का अलाउड नहीं है, रात को वहां पर रास्ता होती है ऐसा बोला जाता है, क्योंकि भगवान वृंदावन में अभी भी अव्यक्त रूप से भगवान की लीला होती चलती रहती है, व्यक्त रूप में नहीं चलती, पर अव्यक्त रूप में अभी भी कवर्ड वृंदावन में चलती रहती है भगवान की लीला। सुबह स्पॉट पर रात को लीला चलती है, रासलीला। तो सुबह आके वो सेवा करते थे, और वो सेवा देख के राधा रानी बहुत खुश हो गई, सिंपल सेवा देख के। हम मेरे को याद है अभी भी, जब हम VTA में प्रवेश किए थे 2013 में, तो पहला से हमको दिया था टेम्पल हॉल क्लीनिंग, राधा गोपीनाथ मंदिर का झाड़ू मारने का सेवा हमको दिया गया था। तो कई बार भक्त लोग देखते थे थोड़ा सा आलस करते थे सेवा करने में, सुबह उठने में आलस करते थे, यार यार टेम्पल हॉल क्लीन करना है, चार चार रूम साफ करना है, इतना बड़ा टेम्पल हॉल है, गौरदेव हॉल है, गोपाल जी हॉल है, साफ करना है। तो गौरामपुर ने हमको एक श्लोक बताया जो भागवत में आता है, श्री रूपिणी कुणयति चरणा अरविंदम लीला सुखन हरि पद्म मुख्य दोषा समलक्षति स्फटिक कुट उपेट हेमनी सम्मार्जति अनुग्रहेण अनन्य यत्ने, कि वैकुंठ में जो जमीन है वो कैसी है, क्रिस्टल क्लियर है, स्फटिक रूप, स्फटिक मतलब क्रिस्टल, क्रिस्टल क्यों गंदा नहीं रहता है, क्रिस्टल क्लियर बोलते हम, स्वच्छ रहता है। फिर भी सम्मार्जति, लक्ष्मी देवी जो है हाथ में झाड़ू लेकर सेवा करने की कोशिश करती है, क्यों, भगवान विष्णु का अनुग्रह प्राप्त करने के लिए। जितने मिनियल सेवा हम करेंगे उतना अनुग्रह भगवान का हमको प्राप्त होगा। राधेश्यामपुर ने एक अनुभव बताया है, राधेश्यामपुर पुणे गए, उन्हें बहुत प्रचार किया, बहुत भक्त बनाए, बहुत IYS मैक्सिमम डिवोटी आजकल देखेंगे ब्रह्मचारी पुणे गई है, मैक्सिमम वॉइसेस आज के जमाने में मैक्सिमम ब्रह्मचारी ज्वाइन करे पुणे टेम्पल में, इनका एक महिमा है उनका, राधेश्यामपुर जी का 10-15 साल सेवा किया, महाराज ने कभी ग्लोरीफाई नहीं किया उनको। जब वृंदावन यात्रा थी, राधेश्यामपुर ने क्लीनिंग सेवा अपने हाथ लिया, और अपने साइज से बड़े बर्तन क्लीन करते थे राधेश्यामपुर। वो जब सेवा उन्होंने किया, महाराज ने फर्स्ट टाइम उनको साइंटिफिक क्लास में ग्लोरीफिकेशन दिया, कि राधेश्यामपुर अपने हाइट से भी ज्यादा बर्तन, बड़े बर्तन धो रहे थे। तो साहजिक रूप से जितनी आप मिनियल सेवा करेंगे, ऑफकोर्स मिनियल भाव से भी होनी चाहिए, कभी कोई लोग मिनियल सेवा करने प्राइड रहते हैं, मैं टॉयलेट क्लीन कर रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, उस भाव से करें तो कभी नहीं आया, कृपा आएगी नहीं, आएगी नहीं। बट मिनियल भाव से मिनियल सेवा करेंगे तो मैक्सिमम कृपा जो है भक्तों की और भगवान की हम आकर्षित कर सकते हैं। इसलिए जो गोस्वामी बोले सेवा हायर सेवा, आपको कुंज निकुंज आप साफ क्या करो। राधा रानी बहुत खुश हो गई, और एक पर्टिकुलर मून लाइट पे राधा रानी कृष्ण रासला कर दे रात को, और रासला में इतने भावभोर हो गए कि वो नाश्यना से राधा रानी का जो लेफ्ट फुट का जो पायल था वो उधर गिर गया, और राधा रानी और कृष्ण चले गए अपने अव्यक्त रूप में, फिर से चले गए लीला करने के लिए। और जब सुबह झाड़ू मारने के लिए आए, उनको सुगंध आने लगा, दुखी कृष्ण को सुगंध आने लगा, सुगंध कहां से आ रहा है इधर, उन्होंने ढूंढा, काफी उधर जैस्मिन के फ्लावर पड़े हुए थे बिखरे हुए, उनको लगा शायद उधर से सुगंध आ रहा है, उन्हें सूंघ के देखा, नहीं उधर से सुगंध नहीं आ रहा है, ये सुगंध को और ही है, ये फ्लावर का सुगंध लग नहीं रहा है मेरे को। और आज उनको बोला कि विशेष रूप से और आनंद आ रहा है, आज पता नहीं क्या हो रहा है, आज मेरा आनंद बढ़ रहा है, क्यों हो रहा है ऐसा समझ में नहीं आ रहा है। समय कितना मेरे पास, 8-9 Okay. So, मेरे को बहुत आनंद आ रहा है आज, क्या हो रहा है तो पता नहीं चल रहा है। तो जब वो उनके पास पेड़ था, स्पेड़ का हिंदी में क्या बोलते हैं, स्पेड़ को फावड़ा हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, कुदाली, कुदाली, वो लेके ढूंढ रहे थे क्या हो रहा है, एक पर्टिकुलर चीज को स्पर्श हो गया उस कुदाली का, और वो सोने का बन गया, बोले क्या चीज है ये, और देखा तो उधर पायल था, बहुत सुंदर पायल था, किसका पायल है, क्या है, क्या है, ढूंढने लगे, ऊपर से आकाशवाणी आ गई, ये जो पायल है बहुत विशेष पायल, उसको संभाल के रखो। तो दुखी कृष्णदास क्या क्या अपने कुर्ते में उसको बांध के रखा, संभाल के रखा। तब राधा रानी ने देखा कि इसको विशेष कृपा मिलनी चाहिए, राधा रानी ललिता सखी को भेज दिया। दूसरे दिन ललिता सखी एक सुंदर एक छोटे से गांव वाली के वेश में आ गई, सिंपल कपड़े पहने थे, ज्यादा सुंदरता छुपा के रखी थी उसने अपनी, वो गांव वाले के वेश में आ गई, बोले कल मेरी सिस्टर इधर आई थी, मेरी बहन आई थी इधर, उसका एक पायल इधर गिर गया, आपको मिला क्या, बोले एक पायल मेरे को मिला है, पर मेरे को देखकर आपको देखकर लगता है ना कि आपके बहन का रहेगा, जिस तरह से आप हो और जिस तरह से वो पायल है वो बहुत विशेष पायल है, किसी से अमीर औरत का पायल होना चाहिए, आपको देख तो लगता नहीं है कि वो आपके सिस्टर का रहेगा, आप प्रूव करो कि आपके सिस्टर का है वो। अभी ये सुन के थोड़ा सा उसको इरिटेशन आ गया ललिता सखी को, कि क्या बोल रहा है ये। तो वो रेडिशन बोले चलो मेरे साथ, तुमको मिलवा दी मेरे सिस्टर से, जब तुम मिलोगे मेरे सिस्टर से तो तुमको रियलाइज है कि वो कौन है और कितनी अमीर है वो। चलो बोले कोई बात नहीं। तो गोल्डन स्पेड लेके और वो जो पायल थी बांधी हुई थी वो लेके जाने लगे। उनको लेके ललिता कुंड लेके आई ललिता देवी। बोले तुमको स्पेशल मंत्र में देती हूँ क्योंकि मेरे सिस्टर को मिलना इतना आसान नहीं है, उसके लिए क्वालिफिकेशन चाहिए। जो क्वालिफाइड व्यक्ति है वही मेरे सिस्टर को, मेरे बहन को मिल सकता है। तो वो क्वालिफिकेशन को मिलना चाहिए, ये मंत्र पहले जाप करो। तो मंत्र का जाप किया दुखी कृष्णदास ने। बोले आप जाओ ये पानी में स्नान करके आ जाओ। अरे वो पानी में स्नान करके वो मंत्र पहले आ गए बाहर तो उसे रियलाइज किया कि मेरे को स्त्री का रूप आ गया है। दुखी कृष्णदास को एक सुंदर इफलजेंट मंजरी का रूप जो है मेरे को आ गया है। और फिर उसको लेके वो अंदर गई एक कमरे में जहां पे राधा रानी एक सोने के सिंहासन में बैठी हुई थी। और राधा रानी को जब देखा उसका रूप कनक मंजरी का रूप मिल गया था उसको, अभी दुखी कृष्णदास को अपने मंजरी फॉर्म मिल गया था। तो फेंट हो गई, वाह राधा रानी प्रत्यक्ष रूप पे। ललिता ने उसका हाथ लगाया फिर से, उड़ गए वो। बोला अभी समझा आपको अनुभूति आ गई इसका हो सकता है पायल? बोले हाँ 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 इसका ही पायल होगा, इतनी सुंदर स्त्री है, इतनी इफलजन, इतनी ऐश्वर्य संपन्न स्त्री है, इसका ही पायल हो सकता है। और कनक मंजरी को रियलाइज हो गया कि मैं खुद कनक मंजरी हूं और ये प्रत्यक्ष मेरी महारानी राधा रानी है। और राधा रानी बहुत खुश हो गई उसको देख के और बोले कि मैं तुमको विशेष कृपा करती हूँ तुम्हारी ये सेवा देख के। और वो पायल जो है अपने उनको सर उनके सर के ऊपर लगा दी और वो पायल का मार्ग जो है तिलक जैसा उनके सर के ऊपर आ गया। बाद में राधा रानी ने कैम्फर लिया, हनी लिया, चंदन लिया, मिक्स किया, उसका तिलक जो है बीच में लगा दिया सेंटर में और बोले अब तुम जाओ भौतिक जगत में, फिर से जाओ तुम और अपनी सेवा कंटिन्यू करो। तुम्हारा ओरिजिनल फॉर्म है कनक मंजरी का, जल्दी तुम मेरे पास फिर से अव्यक्त रूप में आ जाओगे, पर अभी व्यक्त जगत में फिर से जाओ और अपनी सेवा जो है सेवा खुशी कंटिन्यू करो जीव गोस्वामी के अंडर जो है। अभी प्रत्यक्ष राधा रानी को देखा अपने ओरिजिनल फॉर्म में तो कनक मंजरी को जाने का मन नहीं कर रहा था कि मैं कैसे वापस जाऊं, वापस मेरे को जाने की वापस इच्छा नहीं है, मैं रह नहीं पाऊंगा आपके बिना। तो वो हालत देख के राधा रानी ने अपने हार्ट से एक सुंदर कृष्ण के विग्रह निकाल के दिए और विग्रह उनको दे दिए। बोले विग्रह जो है इसका नाम है श्याम सुंदर और ये विग्रह तुम लेके जाओ और आज से तुम्हारा नामकरण मैं करती हूं, तुम्हारा नाम है श्यामानंद कि तुमने मेरे को आनंद दिया है। श्यामा मतलब राधा रानी, जो श्यामा का आनंद देता है वो श्यामानंद। और जो व्यक्ति इस विग्रह की सेवा करेगा उसको स्पेशल बेनेडिक्शन दिया है राधा रानी ने। एक्चुअली 12 बेनेडिक्शन है, मेरे को याद नहीं है पर 3-4 मेरे को याद है, बताता हूं आपको। टोटल 12 बेनेडिक्शन बोला गया है उस वक्त श्यामानंद पंडित को बोला गया राधा रानी के द्वारा कि जो इस विग्रह की नित्य रूप से दर्शन करेगा वो व्यक्ति एट द एंड ऑफ द लाइफ गोलोक वृंदावन 100% चल जाएगा। ये पहला बेनेडिक्शन है, सबसे बेस्ट बेनेडिक्शन, दिल दर्शन करने आप तुम्हारे बस। दूसरा, जो व्यक्ति रोज श्यामा सुंदर का परिसर जो रहेगा मंदिर का उसमें झाड़ू मारेगा, उसमें झाड़ू मारेगा उसके पिछले 10 जनरेशन और आगे 10 जनरेशन के साथ में वो बैक टू गॉडेड जाएगा, साथ में एट ए टाइम उसके साथ लेके जाएगा बैक टू गॉडेड। जो व्यक्ति डेली एक फूल श्यामा सुंदर का अर्पण करेगा व्यक्ति इंद्रलोक जाएगा। तो आपको लगे इंद्रलोक क्यों जाना है भाई, अभी हम बैक टू गॉड जाने की सोच रहे, इंद्रलोक क्यों जाना है? इंद्रलोक जाएगा अपलेशन एंजॉय करेगा, उधर से बैक टू गॉड जाएगा, नीचे नहीं आएगा वापस फिर से। ऐसे कई बेनेडिक्शन है और हर बेनेडिक्शन में एट द एंड ऑफ द है आप बैक टू गॉड जाओगे जो व्यक्ति श्यामा सुंदर की सेवा करेगा। तो अपने पास श्यामा सुंदर आए हुए गोरदेव कॉलेज में झाड़ू करने का अच्छा मौका अपने पास है, क्या अपने एंसेस्टर को लेके बैक टू गॉडेड जा सकते हैं। तो श्यामा सुंदर की मूर्ति लेके वो आ गए। जब आ गए उनके हाथ में श्यामा सुंदर की मूर्ति थी, वो गोल्डन स्पेड था। जीव से पूछा ये सब क्या है, कौन सी मूर्ति है, कहाँ कहाँ गए थे तुम? तो उनके आंख में आंसू होने लगे, वो रोल करने लगे नीचे और उन्हें स्टोरी बताई कि क्या 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 अनुभव मेरे को आ गया, मैं राधा रानी के पास कैसे गया। जीव से बहुत खुश हो गए और बोले कि आज से सच में तुम्हारा नाम श्यामानंदी होगा, हम भी तुमको श्यामानंद बोल के पुकारेंगे, दुखी कृष्ण तुम्हारा नाम अभी नहीं रहेगा और ये तिलक है उसका नाम होगा श्याम मोहन और उसको हम श्यामानंदी तिलक बोल के पुकारेंगे। अभी ये जो वार्ता है हृदय चैतन्य के पास पहुंच गई अफवाह के रूप में। अफवाह कैसे फैलती है, हमको पता है, मिर्च मसाला लगा लगा के बहुत फैलती है। फेमस स्टोरी हमने सुनी है, एक स्त्री एक नदी किनारे कपड़े धो रही थी, एक कबूतर का पीस उसके मुंह पे आकर गया, उसने करके उसको उड़ा दिया। दूसरे स्त्री ने देखा, वो उसने दूसरे स्त्री को जाके बता दिया, तुमको पता है क्या हुआ आज गांव में, क्या हुआ क्या हुआ? एक स्त्री कपड़े धो रही थी और उसके मुंह से पक्षी के पीस बाहर आ गए। बोले क्या बात कर रहे हो, तो आश्चर्य है। वो दूसरे स्त्री के पास गई, उसने पूछा क्या हुआ तुमको पता है गांव में आज? बोले क्या हुआ आज, एक स्त्री कपड़े धो रही थी नदी पे और उसके मुख से एक पक्षी बाहर आ गया। बोले क्या बात है, मुख से पक्षी बाहर आ गया। वो फिर और एक स्त्री के पास गई, बोले तुम पता है तुमको क्या हुआ आज नदी पे? बोले क्या हुआ आज, एक स्त्री कपड़े धो रही थी नदी पे और उसके मुंह से बहुत सारे पक्षी बाहर आ गए। ऐसा मिर्च मसाला लगा लगा के आदमी बातें आगे बढ़ते रहते हुई चीज इतनी सी रहती है, बट अफवाह ऐसे रहती है। इसलिए गीता बोलते ना, अनुद्विगक्रम वाक्यम सत्यम प्रियम हितम चाहिए, जो सत्य है जो प्रिय है हितकारी वही बोलना चाहिए, यह वाणी की तपस्या है अपनी। तो मिर्च मसाला लगा के बहुत सारी चीजें हृदय चैतन्य के पास पहुंच गई कि उन्हें संप्रदाय चेंज किया है, गुरु चेंज किया है, नाम चेंज किया है, तिलक चेंज किया है, और जो श्यामानंद नाम था उनके हार्ट पे अंकित किया था राधारानी ने, तो उनके छाती पे नाम भी अंकित हुआ है श्यामानंद बोल के। हृदय चैतन्य बहुत गुस्सा हो गया, तो अपराध है मेरा, ऐसा कैसे हो सकता है। हृदय चैतन्य 64 महंत 12 सदागोप और बहुत सारे वैष्णव लेके झगड़ा करने के लिए आ गए। इधर अभी देखता हूं, डिबेट करेंगे हम ये क्या गलत किया है। अभी गुरु आ गए, हृदय श्यामानंद पटेल बहुत हम्बल हो गए, गुरु के सामने दंडवत किया, बोले तुमको ओपन चैलेंज देता हूं मैं, अगर सच में जो तुम बोल रहे हो वैसा तुम्हारे साथ हुआ है, राधारानी ने तुमको ये तिलक दिया और राधारानी ने नाम अंकित किया है, तो मैं कपड़े से तुम्हारा ये तिलक और नाम पोछ दूंगा। अगर फिर से प्रकट हो गया तो मैं मानूंगा कि हां सच में ऐसा हुआ है। तो फिर बोले ठीक है, एक रफ कपड़ा लिया हृदय चैतन्य ने और वो पोछ दिया, तिलक जो है पोछ दिया और नाम भी पोछ दिया। और बोले 48 मिनट तुम्हारे पास है, एक मुहूर्त वापस आना चाहिए, अन्यथा तुम गुरु अपराधी के भागीदारी होगी। तो जो गुरु मंत्र, जो राधा का मंत्र जो ललिता देवी ने दिया था हृदय चैतन्य को, श्यामानंद पंडित को, वो मंत्र का जाप उसने किया, और जैसे मंत्र का जाप किया फिर से श्यामानंद पंडित जो है फिर से वो लीला में चले गए, अव्यक्त रूप में राधारानी के पास फिर से चले गए। और राधारानी को बोला ये ऐसा हो रहा है मेरे साथ, आप ही कुछ करो। तो राधा ने बोले टेंशन मत लो तुम। राधारानी कृपा से फिर से तिलक आ गया उनके पास और नाम फिर से प्रकट हो गया, और बोले एक ही चीज बताना अपने गुरु को तुम, कि तुम उनको बता आपके जो गुरु है, गुरु के गुरु, आपके गुरु के गुरु जो है गौरीदास पंडित जो है वो सुबल सखा है, इतना बताना उनको बस। और सुबल सखा के रूप में उन्होंने राधा कृष्ण की सेवा की है, इतना उनको बताना बस तुम्हारा काम हो गया। फिर श्यामानंद पंडित वापस आ जाते तो हृदय चैतन्य देखते अरे सच में यार श्यामानंद नाम फिर से आ गया इसके ऊपर और तिलक फिर से अंकित हो गया, और बहुत खुश होते हैं। बोले ठीक है, तुम गुरु अपराधी के भागी नहीं हो, राधारानी की स्वयं कृपा है, बहुत भाग्यवान हो तुम, राधारानी कृपा तुमको मिल गई है। चलो हम एक काम करेंगे, हम गौर मंडल घूमेंगे और कीर्तन करते करते जाएंगे। जब गौर मंडल घूम रहे थे कीर्तन करते 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 एक संकेत बोल के जगह है वृंदावन में, पता नहीं मैंने भी देखा नहीं अभी तक, बट मैंने सुना है कथा में अभी, एक संकेत बोल के सुना किसने, संकेत बोल के जगह है, वहां पे कुछ एक्टर्स रासलीला का परफॉर्मेंस कर रहे थे, रासलीला का एक्टिंग कर रहे थे, डांस परफॉर्मेंस कर रहे थे। कुछ लड़कियां राधा बनी थी, गोपियां बनी थी, एक लड़का कृष्ण बना था, और सब चल रहा था परफॉर्मेंस उधर। और वो परफॉर्मेंस जब देखा श्यामानंद पंडित ने, वो अपने मंजिल भाव में चले गए, घर रासलीला चल रही है और मंजिलों की सेवा कर रही थी, रासलीला में राधा कृष्ण की सेवा करना उनकी सेवा रहती है। और अपना टावल जो होता है वो टावल उन्होंने अपने सर पर लिया पल्लू जैसा, और वो एक्टिंग में घुस गए, ड्रामा में घुस गए श्यामानंद पंडित, और बहादुर के डांस करने लगे। इतने आंसू उनके आंख से आए कि पूरा शरीर जो है वो वेट हो गया पसीने से और आंसू से। और ये चीज देखी हृदय चैतन्य ने, उनको फिर से गुस्सा आ गया, ये क्या बात है, बोले गुस्सा क्या है इसमें होने की, बोले मैं साखर रस में हूं तुम माधुर रस में जा रहे हो, मैं गुरु तेरा मैं साखर रस में हूं तुम माधुर रस में जा रहे हो, अगेन ये गुरु अपराध है, तुमने गुरु अपराध किया, फिर से तुम अलग रस में जा रहे हो। और उन्होंने क्या क्या स्टिक लिया और एक स्टिक से तीन बार श्यामानंद पंडित को जोर से मारा, और तीन बार जोर से मारने के बाद उनके शरीर पे जो है तीन ऐसे पट्टे आ गए थे, तीन रैश आ गए थे। और वो होने के बाद रात को सपने में चैतन्य महाप्रभु आ गए, हृदय चैतन्य के, चैतन्य महाप्रभु को देखा हृदय चैतन्य, उनके शरीर पे वो सेम मार्क से, बोले आपके शरीर पे मार्क कैसे आ गए, बोले तूने तो किया है, श्यामानंद पंडित को तूने मारा, मैं मेरे भक्त से अभिन्न हूं, मेरे भक्त के जो वार होते मैं कैसे झेल सकता हूं, मैं कैसे सहन कर सकता हूं, वो मैंने मेरे ऊपर झेल लिए और वही रैश मेरे ऊपर आ गए, तूने बहुत बड़ी गलती की है। तो हृदय चैतन्य को एहसास हुआ, अरे मैंने गलती की, उठे उन्हें श्यामानंद पंडित को उठाया, बोले कि माफ करना मेरी गलती हो गई, तुम इतने महान भक्त हो। और तब श्यामानंद पंडित ने बताया उनको कि आपके गुरु जो है गौरीदास पंडित वह सबल सखाते, और उन्होंने भी साख्य होते हुए भी राधा कृष्ण की एकत्र रहने में सेवा की थी। और ये जब बात सुनते हैं हृदय चैतन्य बहुत खुश होते, उनको गले लगाते और बोले तुम महान भक्त हो इसलिए मैं आज महान वैष्णवपुर से मुक्त हो गया, अदरवाइज मेरे हालत क्या होते आज मेरे को पता नहीं। और उनको पूरा आशीर्वाद दे दिया कि आज से तुम मेरे शिष्य नहीं हो, आज से तुम मेरे गुरु समाज हो, एक्चुअली बहुत बड़े भक्त हो, और तुम इधर जीव गोस्वामी के अंडर रहो और इधर सेवा करते रहो। समय बहुत कम है, बहुत सारी लीला बाकी है अभी श्यामानंद पंडित की, समय की कमी हमारे पास है। पर एक ही चीज स्मॉल चीज बताता हूं कि श्यामानंद पंडित जो है जब उन्हें प्रचार चालू किया उड़ीसा में, काफी मुस्लिम लोगों ने भक्त बनाया। एक छोटी सी लीला बताता हूं, अपने डिसाइपल रसिकानंद प्रभु और दामोदर प्रभु के साथ वो उड़ीसा में प्रचार कर रहे थे, जोर से हरिनाम कर रहे थे, भाव विभोर के हरिनाम कर रहे थे, और एक शेर खान बोले मुस्लिम व्यक्ति उधर रहता था उड़ीसा में उस वक्त, एक किंग का मुस्लिम किंग उधर रहता, शेर खान नाम था उसका, और कई मुस्लिम सैनिक उसके पास थे। उन्हें आदेश दिया हरिनाम कीर्तन रुकना चाहिए, भक्त लोग माने नहीं, जोर से कीर्तन करते रहे भाव विभोर के। शेर खान ने आदेश दिया जाओ भक्तों को मार दो, सारे मुस्लिम लोग घुस गए, हाथ में डंडे लेके काठे लेके मारने लगे, उनके पास तलवार भी तो चलाई नहीं थी, डंडे लेके जोर से मारने लगे, मृदंग तोड़ दिए, करताल फोड़ दिए, सब चीजें करने लगे। और जब श्यामानंद अंबेडकर को वार आने लगा, उस समय सारे जो मुस्लिम अधिकारी थे जो सैनिक उधर मारने के लिए आए थे उनके बाल जलने लगे, बाल को आग लग गई और कपड़ों को आग लग गई, और सारे जो अधिकारी थे नदी में जम कर दिया आग बुझाने के लिए। और तब उनको एहसास हुआ ये श्यामानंद है, ये साधारण व्यक्ति नहीं है। और सारे मुस्लिम लोगों ने शरण ली उसकी और वो सब वैष्णव बन गए। और जो शेरखान का जो राजा था मुस्लिम राजा, उसके सपने में स्वयं अल्लाह आ गए। उसने कहा अल्लाह स्वयं सपने में आ गए मेरे, उसने बोला जो अल्लाह और चैतन्य है, मैं स्वयं अल्लाह जो हूं स्वयं चैतन्य हूं, हम दोनों अभिन्न है। आज तूने मेरे भक्त के ऊपर अपराध किया है, भक्त प्रति अपराध किया है, और सच में तेरे को मेरी कृपा चाहिए तो काम कर, जा श्यामानंद के पास जा, उनकी शरण ले ले। और मुस्लिम अधिकारी शरण लेता है और वो भी बहुत बड़ा भक्त बनता है, उसका नाम होता है चैतन्य दास, मुस्लिम नाम उसका होता है चैतन्य दास। और चैतन्य दास बहुत बड़ा भक्त है, अब अगर आचार्य फुले पढ़ोगे चैतन्य दास का काफी कथा है, आचार्य फुले में भी आती है। सो आज के दिन नरसिंहपुर के गांव है जहां पे श्यामानंदपुर में शरीर छोड़ दिया, शरीर त्याग दिया, दो जगह की समाधि बनाई, एक है नरसिंहपुर में एक्चुअल समाधि बनाई गई, और पुष्पा समाधि जो है यही राधा श्याम सुंदर मंदिर जो है यहां पे आके पुष्पा समाधि जो है बनाई गई। और जो राधा रानी जो है वो भरतपुर में थी, सो श्यामानंद पंडित के सपने में कृष्ण आ गए, बोले मेरी राधा रानी जो है भरतपुर के किंग के पास है, और उस समय भरतपुर के किंग के पास किंग के सपने में कृष्ण आ गए श्याम सुंदर, बोले मैं ये जो राधा रानी है इसको लेके तुम जाओ वृंदावन में श्याम सुंदर मंदिर में उसकी स्थापना करो। दोनों आ गए, दोनों की शादी करवा दी, दोनों विग्रहों की शादी करवा दी, और जयपुर के राजा थे उन्होंने ये सुंदर मंदिर जो है उस वक्त बनवा दिया था। ऐसा राधा श्याम सुंदर मंदिर है जो सौभाग्यपूर्ण हम गुरु महाराज की कृपा से हम इधर बैठे वृंदावन में वही अनुभव कर पा रहे, और जो बड़े विग्रह जो है वो बलदेव विद्याभूषण द्वारा अर्चित विग्रह है, जो बड़े विग्रह जो है सो सुंदर श्याम सुंदर विग्रह राधा बेड़ी के स्वयं हाथ से प्रकट हुए, और सुंदर बेनेडिक्शन भी दिया है कि जो इस प्रकार से सेवा करेगा उसको क्या क्या मिलेगा। हमारा सौभाग्य है कि हम वैसा कर सकते हैं डेली, वो सौभाग्य हमको दिया गया है। सो श्यामानंद प्रभु श्यामानंद पंडित के प्रभु हम प्रार्थना करेंगे क्योंकि तिरुभाव दिवस के दिन हमारे भी राधा रानी के चरण में भक्ति आ जाए, सिंपल सेवा करते करते हम भी राधा रानी कृपा आकर्षित कर पाए और ये जीवन परिपूर्ण कर पाए। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ इधर एक श्यामानंद पंडित जी का पादुका रखा हुआ है, आरती के बाद उसका स्पर्श करके आप आशीर्वाद ले सकते हैं। हरे कृष्ण।